नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन नॉट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। ओरी अलोन की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू सिस्टम्स बायोलॉजी डिजाइन प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजिकल सर्किट्स सिस्टम्स बायोलॉजी की पाठ्य पुस्तक है। इसका विषय किसी कोशिका, जीन या प्रोटीन को अलग अलग इकाइयों के रूप में देखना नहीं, बल्कि उनके बीच बनने वाले नियामक नेटवर्कों को समझना है। पुस्तक का केंद्रीय प्रश्न है कि जैविक तंत्र जटिल होने पर भी विश्वसनीय, अनुकूलनीय और कार्यक्षम कैसे बने रहते हैं। अलोन इंजीनियरिंग की भाषा में जैविक सर्किटों के डिजाइन सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। वे गणितीय मॉडलों को वास्तविक जैविक उदाहरणों से जोड़ते हैं ताकि पाठक केवल नाम याद न करे बल्कि किसी नेटवर्क के कार्य का तर्क भी जान सके। पुस्तक में ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन, नेटवर्क मोटिव, फीडबैक, रोबस्टनेस, केमोटैक्सिस और मॉड्यूलैरिटी जैसे विषय आते हैं। दूसरा संस्करण क्षेत्र में हुए नए विकासों को भी समेटता है। आवश्यक गणित बुनियादी स्तर से समझाया गया है। फिर भी पुस्तक का उद्देश्य कठोरता बनाए रखते हुए जैविक प्रणालियों के बारे में मात्रात्मक ढंग से सोचना सिखाना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले नेटवर्क मोटिव, जटिल जैविक नेटवर्कों के बार बार दिखने वाले कार्यात्मक सर्किट। पुस्तक का सबसे प्रभावशाली विचार नेटवर्क मोटिव है। मोटिव जीनों, प्रोटीनों या अन्य जैविक घटकों के बीच जुड़ाव का छोटा पैटर्न होता है जो किसी नेटवर्क में संयोग से अपेक्षित मात्रा से अधिक बार दिखाई देता है। अलोन का तर्क है कि ऐसे पैटर्न केवल चित्रात्मक समानताएं नहीं है, वे सूचना प्रसंस्करण के विशिष्ट कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ट्रांसक्रिप्शन नेटवर्क में नियामक संबंधों की दिशा और समयक्रम यह तय करते हैं कि कोशिका किसी संकेत को तुरंत सुनेगी, विलंब से प्रतिक्रिया देगी या क्षणिक उतार चढ़ाव को अनदेखा करेगी। इस दृष्टिकोण से विशाल नेटवर्क को हजारों अलग संबंधों की सूची मानने के बजाय सीमित संख्या के पुनरावर्ती सर्किटों के संयोजन के रूप में पढ़ा जा सकता है। पुस्तक मोटिव की सांख्यिकीय पहचान को भी महत्वपूर्ण मानती है। किसी पैटर्न की आवृत्ति की तुलना उपयुक्त यादृच्छिक नेटवर्कों से किए बिना उसे जैविक रूप से अर्थपूर्ण नहीं कहा जा सकता। फिर भी बारंबारता अपने आप कार्य सिद्ध नहीं करती, इसलिए गणितीय विश्लेषण और प्रयोग दोनों जरूरी है। यही संयोजन पाठक को नेटवर्क के आकार से प्रभावित होने के बजाय उसके कारणात्मक ढांचे, इनपुट और आउटपुट के संबंध तथा संभावित कार्य के बारे में स्पष्ट प्रश्न पूछना सिखाता है। दूसरा, फीडबैक और फीड फॉरवर्ड संरचनाएं, स्मृति, स्विचिंग और समय नियंत्रण का आधार। अलोन जैविक नियंत्रण को समझाने के लिए फीडबैक लूपों और फीड फॉरवर्ड लूपों को मूल सर्किट तत्वों की तरह प्रस्तुत करते हैं। पॉजिटिव फीडबैक में किसी घटक की सक्रियता उसी सक्रियता को आगे बढ़ाती है। उचित परिस्थितियों में यह बायस्टेबिलिटी उत्पन्न कर सकता है जहां तंत्र दो स्थिर अवस्थाओं में से एक में रहता है। इसका महत्व जैविक स्मृति में है क्योंकि आरंभिक संकेत हटने के बाद भी अवस्था बनी रह सकती है। इसके विपरीत नेगेटिव फीडबैक किसी विचलन को घटाने में सहायक होता है और स्थिरता, अनुकूलन या कुछ स्थितियों में दोलन से जुड़ सकता है। पुस्तक इन्हें केवल नामों के रूप में नहीं रखती बल्कि दरों, विलंबों और नियामक शक्ति जैसे मापदंडों के माध्यम से उनके व्यवहार को समझाती है। फीड फॉरवर्ड लूप खासकर समय नियंत्रण के लिए उपयोगी उदाहरण है। एक नियामक लक्ष्य को सीधे भी नियंत्रित करता है और दूसरे नियामक के माध्यम से भी। दोनों मार्गों के संकेतों की दिशा और गति बदलने पर सर्किट छोटे अस्थायी संकेतों को छान सकता है या नियंत्रित विलंब से प्रतिक्रिया दे सकता है। इस विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि नेटवर्क की कार्यक्षमता केवल कौन किसे नियंत्रित करता है इस पर नहीं बल्कि नियंत्रण की गतिशीलता पर भी निर्भर करती है। तीसरा, रोबस्टनेस, जैविक कार्य को शोर और पर्यावरणीय परिवर्तन के बीच बनाए रखने की क्षमता। जीवित प्रणालियां अणुओं की संख्या में उतार चढ़ाव, बाहरी पर्यावरण के बदलाव और आंतरिक त्रुटियों के बावजूद उपयोगी कार्य करती है। पुस्तक इस गुण को रोबस्टनेस के रूप में जांचती है। रोबस्टनेस का अर्थ यह नहीं कि कोई तंत्र कभी नहीं बदलता, अधिक सटीक अर्थ यह है कि जिन परिवर्तनशीलताओं से कार्य बाधित नहीं होना चाहिए उनके प्रति आउटपुट अपेक्षाकृत स्थिर रहे जबकि महत्वपूर्ण संकेतों के प्रति प्रतिक्रिया बनी रहे। अलोन इस अंतर को सर्किट संरचना और मात्रात्मक मॉडल से जोड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर बैक्टीरियल केमोटैक्सिस में कोशिकाओं को रासायनिक संकेतों के बदलते स्तरों के बीच दिशा संबंधी जानकारी का उपयोग करना होता है। संबंधित सर्किट अनुकूलन जैसी विशेषता प्रदर्शित कर सकते हैं जिससे स्थिर पृष्ठभूमि स्तर के बजाय परिवर्तन पर प्रतिक्रिया केंद्रित हो। पुस्तक काइनेटिक प्रूफरीडिंग और बायफंक्शनल कंपोनेंट्स जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से यह भी दिखाती है कि चयनात्मकता और विश्वसनीय सिग्नलिंग किस तरह हासिल हो सकती है। रोबस्टनेस का अध्ययन इसलिए व्यावहारिक है कि यह बताता है कि किसी मॉडल में कौन से पैरामीटर निर्णायक हैं और किनके बदलने पर भी व्यवहार लगभग समान रहता है। इस प्रकार पाठक जैविक डिजाइन को नाजुक पुर्जों की श्रृंखला नहीं बल्कि त्रुटि सहने वाली नियंत्रण व्यवस्था के रूप में देखता है। चौथा, सरल गणितीय मॉडल, जैविक परिकल्पनाओं को जांचने का अनुशासित तरीका। पुस्तक की पद्धति का एक महत्वपूर्ण पक्ष मॉडलिंग है। अलोन बहुत विस्तृत जैविक विवरण को तुरंत समीकरणों में बदलने का आग्रह नहीं करते। पहले वे एक स्पष्ट कार्यात्मक प्रश्न चुनते हैं, जैसे कोई सर्किट किस संकेत पर प्रतिक्रिया करेगा, कितनी तेजी से करेगा या व्यवधान के बाद कैसे लौटेगा। इसके बाद न्यूनतम मॉडल बनाया जाता है, जिसमें केवल वे चर और संबंध रखे जाते हैं जो प्रश्न के लिए आवश्यक हों। ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन के वर्णन से लेकर डायनेमिक सर्किटों तक मॉडल दर समीकरणों, नियामक फलनों और स्थिर अवस्थाओं जैसे उपकरणों का उपयोग करते हैं। इनका उद्देश्य जैविक वास्तविकता की हर बारीकी की नकल करना नहीं बल्कि संभावित तंत्रों के परिणामों को अलग करना है। एक मॉडल से भविष्यवाणी निकलती है, फिर प्रयोग यह जांच सकता है कि वास्तविक तंत्र उस भविष्यवाणी के अनुकूल है या नहीं। पुस्तक परिशिष्टों और क्रमिक व्याख्या के जरिए आवश्यक जैविक तथा गणितीय पृष्ठभूमि उपलब्ध कराती है। फिर भी पाठक को बीजगणित और ग्राफों से सहज होने की जरूरत पड़ सकती है। इसकी विशेष शक्ति यही संतुलन है। गणित को सजावटी भाषा नहीं बनाया गया है बल्कि उसे कारण और परिणाम के बीच पुल की तरह रखा गया है। इससे मॉडल की सीमाएं, मान्यताएं और परीक्षण योग्यता भी चर्चा का हिस्सा बनती है। अंत में मॉड्यूलैरिटी और बदलते परिवेश के अनुरूप जैविक संगठन की व्याख्या। पुस्तक जैविक प्रणालियों की मॉड्यूलैरिटी को एक व्यापक डिजाइन सिद्धांत के रूप में रखती है। मॉड्यूलैरिटी का अर्थ है कि किसी बड़ी व्यवस्था के कुछ भाग अपेक्षाकृत अलग कार्य कर सकें, फिर भी आवश्यक स्थानों पर एक दूसरे से जुड़े रहें। यह विचार जीन नियमन से लेकर कोशिकीय प्रक्रियाओं और बड़े जैविक संगठन तक लागू हो सकता है। इसका लाभ केवल व्यवस्था को समझने में आसानी नहीं है। यदि कार्यात्मक भाग कुछ सीमा तक अलग हों, तो एक भाग में परिवर्तन होने पर पूरे तंत्र को फिर से बनाने की आवश्यकता कम हो सकती है। अलोन का दृष्टिकोण मॉड्यूलैरिटी को विकास और पर्यावरण से भी जोड़ता है। जब जीवों को ऐसे परिवेश मिलते हैं जहां अलग अलग उपसमस्याएं स्वतंत्र रूप से बदलती रहती हैं, तब पुनः उपयोग योग्य उपकार्य और उनके अनुरूप संरचनाएं उपयोगी हो सकती है। हालांकि पुस्तक मॉड्यूल को पूरी तरह बंद डिब्बा नहीं मानती। वास्तविक जैविक नेटवर्कों में भागों के बीच पारस्परिक प्रभाव रहते हैं, इसलिए मॉड्यूलैरिटी एक मात्रात्मक और संदर्भ निर्भर गुण है। यह चर्चा नेटवर्क मोटिफो को बड़े स्तर के संगठन से जोड़ती है। छोटे सर्किटों का कार्य समझना पर्याप्त नहीं, यह भी पूछना होता है कि वे किन सीमाओं में संयोजित होते हैं, किस प्रकार के पर्यावरणीय बदलावों का सामना करते हैं और उनके संगठन से अनुकूलन तथा विकास की क्षमता कैसे प्रभावित होती है। निष्कर्ष में एन इंट्रोडक्शन टू सिस्टम्स बायोलॉजी उन विद्यार्थियों, शोधार्थियों और वैज्ञानिकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो जैविक तथ्यों की सूची से आगे बढ़कर उनके संगठन और कार्य के सिद्धांत समझना चाहते हैं। आणविक जीव विज्ञान के विद्यार्थियों को इससे गणितीय और नेटवर्क आधारित दृष्टि मिलती है। भौतिकी, गणित, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी या इंजीनियरिंग से आने वाले पाठकों को यह जीव विज्ञान में प्रवेश का ऐसा मार्ग देती है जिसमें उनकी मात्रात्मक आदत उपयोगी बनती है। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि पाठक किसी जैविक नेटवर्क को देखकर बेहतर प्रश्न बना सकता है, न्यूनतम मॉडल चुन सकता है और प्रयोग से जांचे जा सकने वाले परिणाम पहचान सकता है। इसका बौद्धिक लाभ यह है कि यह जटिलता को रहस्य मानकर छोड़ने के बजाय संरचना, गतिशीलता और कार्य के संबंध में विश्लेषित करती है। समान विषय की अनेक पुस्तकों की तुलना में इसकी अलग पहचान इंजीनियरिंग दृष्टिकोण, स्पष्ट जैविक उदाहरणों और सीमित लेकिन सार्थक गणित के संयोजन में है। यह न तो केवल नेटवर्क डेटा का परिचय है, न केवल समीकरणों की पाठ्यपुस्तक, नेटवर्क मोटिव फीडबैक। रोबस्टनेस और मॉड्यूलैरिटी को एक ही वैचारिक ढांचे में रखकर यह बताती है कि जैविक सर्किट क्या करते हैं और वे वैसा क्यों बने हो सकते हैं। गणित से बिल्कुल अपरिचित पाठक को कुछ भाग चुनौतीपूर्ण लग सकते हैं, पर क्रमिक प्रस्तुति और अभ्यास प्रश्न इसे गंभीर अध्ययन के लिए उपयुक्त बनाते हैं। इसलिए यह क्षेत्र का व्यापक विश्वकोश नहीं बल्कि सिस्टम्स बायोलॉजी में सोचने की पद्धति सिखाने वाली आधारभूत पुस्तक है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं उरी अलोन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।